أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ چیپٹر نمبر ہم نے 27 شروع کیا تھا کل، برزخ اور اعراف، اور بات واضح ہو رہی تھی کہ سارا نظام یہ نزول اور صعود، یعنی کہیں سے اطلاع آتی ہے، نیچے کو ڈسینڈ کرتی ہے اور ایک نقطے پہ پہنچ کے وہ واپس پلٹنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ سارا جو نزول اور صعود کا نظام ہے اس کو سمجھانے کے لیے لطائف ستہ کو بیان کیا گیا. یہ لطائف ستہ کا نام سنا، آپ غور کریں کہ ہم نے جو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے جو تصویریں بنی تھیں کہ لطائف پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں، تو اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اصل میں نزول و صعود کے 6 درجے ہیں. ان درجوں کو واضح کرنے کے لیے ان کے نام بتائے گئے ہیں. اب جیسے لطیفہ اخفا ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ سری ہے، لطیفہ روحی ہے، لطیفہ قلبی ہے اور لطیفہ نفسی ہے. یہ ساری بات ہم نے کل پڑھی. آج ہم پیج نمبر 235 سے شروع کر رہے ہیں، پیج نمبر 235. اب ذرا اس کی تشریح حضور مرشد کریم کے الفاظ میں سماعت فرمائیے. ہر نو میں یہ جو مائک کھلا ہوا ہے پلیز ذرا اس کو سوئچ آف کر لیں، کیونکہ وہ جو پس منظر کی آوازیں ہیں اس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے. تھینک یو. تو یہ پیج نمبر 235 پہ مذکور ہے کہ ہر نو میں ہر حرکت ایک طول رکھتی ہے. ہر نو میں، یعنی ہر نو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، انواع سے کیا مراد ہے؟ درختوں میں پھر آگے دیکھیں، آم ایک درخت ہے، امرود ایک درخت ہے، جامن ایک درخت ہے، پیپل ایک درخت ہے، برگد ایک درخت ہے. تو یہ درختوں کی انواع ہو گئی. جانوروں میں دیکھیں تو شیر ہے، بکری ہے، یہ چوہا ہے، تو بلی ہے، یہ جتنی نو ہیں، ہر نو میں ہر حرکت ہر نو میں، یعنی شیر کی ہر حرکت، یعنی شیر ایز اے نو، ہر حرکت وہ ایک طوالت رکھتی ہے، ایک فاصلہ طے کرتی ہے. اور پھر یہ 6 حرکات جو ہیں، 6 حرکات میں سے 3 حرکات نزولی اور 3 صعودی ہیں. یعنی یہ 6 حرکتیں ہر نو میں ہیں، نہیں غلط، ہر نو میں ہر حرکت، ہر نو کی اپنی ایک حرکت ہے. اور پھر یہ جو 6 حرکات ہیں، یہاں پہ یہ نقطہ سمجھ لیجیے، حضور قلندر بابا اولیاء کا ارشاد عالی مقام ہے، جمادات ایک لطیفے کی مخلوق ہیں، نباتات دو لطائف کی، نباتات اور حیوانات دو لطائف کی مخلوق ہیں. یہ سیارگان جو ہیں، اجرام سماوی جو ہیں، یہ 3 لطائف کی مخلوق ہیں، اور فرشتے جو ہیں یہ 4 لطائف کی مخلوق ہیں، اور جنات 5 لطائف کی مخلوق ہیں، اور انسان جو ہے یہ 6 لطائف کی مخلوق ہے. اب اس بات کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اس جملے کو سمجھیں، کہا یہ جا رہا ہے جیسے اب جمادات میں صرف لطیفہ نفسی، یعنی کہ وہ حرکتیں ہیں جو एक अपना तूल रखती हैं। तो हर नौ में उनकी हरकतें जो हैं या उनके जो मूवमेंट्स हैं या उनकी फंक्शनैलिटीज जो हैं या उनकी जो मोशंस हैं वो अपना एक तूल रखती हैं या एक तवालत इख्तियार करके वो अपना डिस्प्ले करती हैं, अपना एक फासला तय करके वो अपने आप को डिस्प्ले करती हैं। तो हर नौ में जो यानी हर हरकत एक तूल रखती है और इन छह हरकत में से ये जो छह हरकतें इनमें से तीन नजूली हैं और तीन सऊदी हैं। ये जो तीन नजूली हरकत के मुकाबल दूसरे रुख पर तीन सऊदी हरकत हैं ये बयक वक्त वकू में आती हैं। यानी इधर नजूल हो रहा है क्योंकि रफ्तार बहुत होती है तो साथ ही उसी लम्हे दूसरी तरफ से वो रिवर्स हो रही होती है। तो अख्फा की बेरंगी तमाम रंगों की असल है और ये बेरंगी सिर में पहुंचने के बाद यकरंगी हो जाती है। ये बेरंगी लतीफा अख्फा से शुरू होती है और सिरी में पहुंच के यकरंगी हो जाती है और सिर के यकरंगी अपने अंदर तमाम रंगों को समेटे हुए। अब सिर के बाद ये हरकत एक तूल और तय करती है और जैसे ये तूल तय होता है यक रंग के अंदर इस यक रंगी के अंदर सब रंग बिखर जाते हैं यानी उस वक्त तक ये सारे रंग कंपोज्ड होते हैं। और ये लतीफा है कल्बी पे जिन हदूद में ये रंग मुंतशिर होते हैं उन हदूद का एक रुख कल्ब। गौर करें कल्ब के आगे क्या लफ्ज लिखा है तसव्वुर यानी ये तसव्वुर बन गया और दूसरा रुख नफ्स यानी एहसास है। ये तसव्वुर और एहसास असल में इसको कल्ब और नफ्स कहा गया। तसव्वुर नफ्स और एहसास के रंगों के मजमुए का नाम और करें तसव्वुर नफ्स और एहसास यानी तसव्वुर और एहसास के मजमुए के रंगों के मजमुए का नाम मजहर है। मैं यहां पे आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल अर्ज करना चाहूंगा। आप अपने इर्द गिर्द चीजें देख रहे हैं हमें ये चीजें क्यों नजर आ रही हैं इसलिए कि इनमें रंग है। हर चीज इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उसमें रंग है वो रंगों का मजमू है। अब आप गौर करें कि सारे रंगों की बुनियाद क्या है तो ये रोशनी है। रोशनी की वजह से अगर कमरे में बल्ब नहीं जल रहा तो क्या कोई कमरे में चीज दिखेगी? आंसर इज नो। यानी रोशनी जो यक रंग है रोशनी यकरंगी है। ये रोशनी जब नीचे चीजों पे पड़ती है तो ये रंगों में बिखर गई या इसके रंग डिस्प्ले होना शुरू हो गई ये मुंतशिर हो गई इसके रंग मुंतशिर हो गए रोशनी नहीं मुंतशिर हुई। जरा गौर करें किस कदर गहराई में उतर के सोचना पड़ता है या वो हमें सोचना सिखा रहे हैं। अब इस यकरंगी को अगर आप गौर करें कि इस यकरंगी की असल क्या है इसकी असास क्या है तो इस यकरंगी की असास वो करंट है जिसकी वजह से ये बल्ब जल रहा है। अब करंट का कोई रंग नहीं है तो करंट जो है ये बेरंगी कहलाएगा। ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये इसमें कोई रंग नहीं है लेकिन ये असास बन रहा है यकरंगी की और यकरंगी वजह बन रही है रंगीनी की। जरा गौर करें अब ये चार आलमीन क्या बने के रंग यकरंगी यानी रंगीनी उससे ऊपर यकरंगी उसके ऊपर बेरंगी और उसके ऊपर है वराय बेरंग। अब ये वराय बेरंग क्या है तो ये करंट को चलाने वाला जहन करंट को जनरेट करने वाला जहन फिर उसका ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने वाला जहन, वो वराए बेरंग हुआ। अब ये चार आलमीन जो हैं, इनको इस मिसाल से समझ लीजिए कि एक है रंगीनियों का आलम। अगर हम सिर्फ रंगों को देखने के आदी हैं तो हमारा जहन कहाँ हुआ? सतह पे, सतही बात हुई। लेकिन अगर हम ये समझें कि भी इस सारे रंगों की असल जो है वो ये रोशनी है, यानी यकरंगी है। अब ये देखें किस तरह से, अगर आप इसे प्लेन इस तरह से पढ़ते रहें तो ये शायद इस तरह समझ ना आती, लेकिन ये देखें ना, हमारे इर्द गिर्द की मिसालें हैं, ये हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हर वक्त की हर लहजे की ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हमारी जहन की साख्त ऐसी बन गई है कि हम रंगों को देख रहे हैं, यकरंगी को नहीं देख रहे या समझ नहीं रहे। अगर यकरंगी को समझ रहे हैं तो फिर उसके पीछे जो बेरंगी है वहां तक जहन नहीं जा रहा। अगर फर्ज करें किसी वजह से वहां तक जहन चला भी जाए तो आगे वराए बेरंग को समझने के लिए जो कोशिश, जो काविश, जो एफर्ट, जो जहद, जो जहद मुसलसल दरकार है, उसका अंदाजा कर लीजिए। तो ये देखिए कि इस पैराग्राफ में हजूर मुर्शिद करीम ने वाजे बता दिया कि ये अख्फा की बेरंगी तमाम रंगों की असल है। बेरंगी से बात शुरू हुई, अख्फा जो है ये बेरंगी का आलम है। अख्फा और खफी ये दोनों बेरंगी हैं। लतीफा सिर्री और लतीफा रूही ये सारी यकरंगी है। और फिर रंगीनियों का जो आलम है उसे कल्बी और नफसी कहा, और कल्बी को तसव्वुर बताया और नफसी में एहसास को बता दिया। अब ये कानून सिर्फ नौ इंसानी के लिए नहीं है, ये कानून है, ये सारा निजाम जो है ये कानून है, और ये सिर्फ नौ इंसानी के लिए नहीं है, हर नौ के लिए मखसूस है। वो इंसान की नौ हो, फरिश्तों की या जिन्नात की नौ हो, या किसी भी सयारे की नौ हो, सबके लिए यही कानून नाफिज है। हरकत में बेरंगी जमानियत है, लेकिन यकरंगी के बहुत सारे रंगों का बिखरना शऊर है, बहुत सारे रंगों का बिखरना शऊर है। जब ये रंग नहीं बिखरे होते तो ये सब कुछ लाशऊर है, जब ये रंगों में चीज नजर आती है तो ये शऊर बन जाती है, ये शऊर में आ जाती है। होता ये है जब जमान, जब जमा यानी टाइम सतह पर होता है तो मकान यानी स्पेस उमक में होता है। उमक गहराई को कहते हैं, उमक निचली सतह को कहते हैं। समुंदर की एक सतह होती है, उसकी गहराई होती है, उसे उमक कहते हैं। अमीक का लफ्ज इसी से है, उमक से ही अमीक है। लेकिन यानी टाइम सतह पर होता है तो मकानियत उमक में होती है, जब मकानियत सतह पे आ जाती है तो जमानियत उमक में चली जाती है, यानी गहराई में चली जाती है, यानी नीचे मगलूब हो जाती है। लेकिन मजहर की हदूद में कदम रखने के बाद जमा उमक में चला जाता है, गहराई में चला जाता है या नीचे चला जाता है, और मकान सतह पर आ जाता है। अख्फा से वो सबसे ऊपर टॉप पहले लतीफे से मजहर की तरफ जो हरकत वाक्या होती है ये नजूली हरकत है। लेकिन जब मकान सतह पर आ जाता है तो हरकत सऊदी हो जाती है। अब ये हरकत लतीफा नफसी से रूह की तरफ सऊद करती है, लतीफा नफसी से यानी अख्फा से नफसी की तरफ नजूल किया, फिर नफसी से रूह की तरफ सऊद करती है, और यानी लतीफा रूही की तरफ, और वहां से लतीफा रूही से खफी की तरफ। गौर करें इसमें क्या, एक एक लतीफे का नाम छोड़ दिया, यानी एक तरफ से आते वक्त तीन लतीफे और जाते वक्त तीन लतीफे। तो इस तरह से ये सारा निजाम छह लताइफ पे है कि एक तरफ से रौ आ रही है और दूसरी तरफ से जा रही है, इसलिए इसे बयक वक्त कहा। गौर करें कि अख्फा से मजहर की तरफ वो नजूली हरकत है, यानी वो सिर में आएगी और वहां से नफ्स में आएगी, वो बीच में एक स्किप करेगा, और फिर वापसी पे हरकत जब सऊदी हो जाती है तो ये फिर लतीफा नफसी से रूही में जाएगी, और बीच में कल भी हट गया, और रूही से फिर खफी की तरफ जाएगी। अब इसमें से सिर हट गया, ये इस जुमले में इस चीज को नोट करें कि लतीफा कल्बी और लतीफा नफसी की इज्तमाईयत, यानी इनका जमा होना, यानी तसव्वुर और एहसास का जमा होना, इसका नाम है आलमे नासूत। लतीफा रूही सऊदी और नजूली हरकत के दरमियान एक पर्दा है, ये लतीफा रूही के ये एक पर्दा है। इस आलम को इराफ या बरजख कहते हैं, गोया जो नजूल कर रही है वो एक पर्दे पे आके रुकती है, फिर उस पर्दे से कुछ स्टे करके उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, फिर वो नीचे मजीद नजूल करती है, फिर जब ये यहाँ पे वो मजहर बन जाती है उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, अब ये रिकॉर्ड ऊपर चढ़ रहा है, तो ये रिकॉर्ड वापस जब उस पर्दे पे जाता है तो उस जगह को पर्दा एक ही है, एक ऊपर से आते वक्त और एक नीचे से जाते वक्त, उसके ऊपर की सतह जो है उस पर्दे की उसका नाम है बरज़ख, और नीचे से जब हम ऊपर को जा रहे होंगे तो जाहिर है कि वही पर्दा जब दोबारा आएगा तो उसकी निचली सतह एराफ कहलाएगी। ये इसको जो इश्तबा होता है कि ये क्या बात है कि एक ही पर्दा है और वो एक ही वक्त में दोनों चीजें हैं, वो एक पर्दा है जिसकी दो सतहें, ऊपर से आने वाली इतला जिस सतह पे पड़ रही है उसे बरज़ख कहते हैं, और फिर जब नीचे से जाने वाली इतला उस पर्दे की जिस सतह पे पड़ रही है जाहिर है कि वो पर्दे की निचली सतह होगी, उसका नाम एराफ है। इसलिए ये दो मुख्तलिफ लफ्ज आए। नजूल से जमीन पर आने से पहले जिस आलम या जिस पर्दे पर कयाम होता है वो पर्दा लतीफा रूही है। अब ये पर्दे का डिस्क्रिप्शन भी सुन लीजिए, इसको बरज़ख कहते हैं। मजहर के बाद जब सऊदी हरकत शुरू होती है तो बीच में एक पर्दा आता है, इस आलम को एराफ कहते हैं। अब लतीफा खफी ये किताबुल मरकूम है, यानी इंसान जो कुछ करता है उसके अमाल का रिकॉर्ड, तमाम हरकतों सकनात की दस्तावेजी फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री बन गई उसकी, किसने क्या क्या हरकत की थी, हरकतें वो सारी की सारी वहां पे एक दस्तावेजी फिल्म बनती जा रही है, और ये है किताबुल मरकूम। अब ये फिल्म ही दरअसल हशर नशर की मंजिल है, यानी इस फिल्म ने ही हशर नशर तक जाना है। आलम इराफ से हम मुंतकिल होंगे कयामत में, कयामत का मतलब है कायम होना, कुरान में ये लफ्ज आया यौमुल कयामा, और यहाँ दुनिया में हम देखते हैं कि सारी दुनिया कयामत आ गई, और भाई कयामत तो अब मौत के बाद कहीं आनी है, लेकिन यहाँ मौत से पहले आ जाती है इनकी कयामत। तो ये लफ्जों को दुरुस्त इस्तेमाल न जानने की वजह से पूरा तसव्वुर उसके से वाबस्ता जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो लिहाजा अगर आप ये देखें क्या फरमाया गया, क्या फरमाया हजूर मुर्शिद करीम ने कि ये फिल्म ही दर असल हशर नशर की मंजिल है, यानी कयामत के बाद फिर यही फिल्म। अब एराफ में आप इसे जिन हवासों से समझ रहे हैं वो मौत के बाद के हवास है, यौमुल कयामा में हवास की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है वो रूह के हवास शुरू हो जाते हैं, तो फिर उन्हीं हवासों के साथ ये फिल्म حشر نشر تک منتقل ہوتی ہے اور اس کی رفتار لگ بھگ 2 کروڑ گنا ہے لگ بھگ. تو یہ فلم جو ہے یہ جو ہمارا کتاب المرقوم ہے اگر یہ صحیح بنی ہوگی صحیح ڈاکیومنٹری ہوگی قابل فخر ڈاکیومنٹری ہوگی جس کو دیکھ کے آپ خود خوش ہوں گے تو وہ موت کے بعد کے حواس میں اور زیادہ خوشی دے گی. پھر جب یوم القیامہ یعنی کہ جب آپ کی روح کے حواس قائم کیے جائیں گے تو وہ اور زیادہ مسرت کا لطف کا سرور کا باعث بنے گی. پھر جب یہ روح کے حواس کے ساتھ یہی ریکارڈ حشر حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو اکٹھا کرنے کو نشر کہتے ہیں ریلے کرنے کو نشر آپ کہتے ہیں نا نشریات میں فرق پڑ گیا نشر ہو رہا ہے پروگرام نشر ہو رہا ہے تو یہ حشر نشر حشر میں نے جمع کرنا جہاں پہ ساری چیزیں اللہ کے ذہن سے وابستہ ہو کر ایک جگہ جمع ہوں گی. یہ کتاب المرقوم کا ریکارڈ سن لیجئے صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ فلم یہ دستاویزی فلم جو کہ ایک مائکرو فلم بن جاتی ہے انسان شروع میں مائکرو فلم ہی ہوتا ہے ہر بیج کے اندر ایک درخت جو ایک مائکرو فلم ہے وہ مائکرو فلم اپنا ڈسپلے کرتی ہے اور ایک دوسری مائکرو فلم بن کر تو اوپر کی منزلیں طے کرتی ہے اور یہ فلم ہی دراصل حشر نشر کی منزل ہے. یہ سب انسانی زندگی کے 7 قدم ہوئے. اب یہ سارے کتنے قدم ہوئے 7. اب ان 7 قدموں کی بات سن لیجئے یہ 7 قدم یا 7 سبِ سماوات کی بات آ رہی ہے. ان 7 قدموں میں ہر قدم ایک عمر یا شعور ہے. یہ سبِ سماوات کی بات واضح ہو رہی ہے عمر. ان 7 قدموں 7 اور 7 قدم پر انسان نزول و صعود کی حرکات پوری کر رہا ہے یعنی یہ 7 قدم جو ہیں یہ اصل میں نزول اور صعود کے اقدامات ہیں یا قدم ہیں کہ ایک مرحلے میں ہم 3 قدم نزول کر رہے ہیں اور ایک مرحلے میں 3 قدم صعود کر کے واپس اسی نقطے میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ 7 قدم بنے ٹوٹل. اب اس کی تفصیل سن لیجئے. ان 7 قدموں یا عمروں کے 2 نام ہیں عالم رنگ یا عالم ناسوت دوسرا عالم حشر نشر. 2 ہی نام ہیں ایک عالم ناسوت یہ ایک انتہا ہے اور دوسری انتہا ہے حشر نشر. اب ان دونوں منزلوں کے درمیان 2 مرحلے اور پڑتے ہیں لوہے محفوظ اور عالم ناسوت کا درمیانی مرحلہ عالم مثال ہے اور عالم ناسوت اور حشر نشر کا درمیانی مرحلہ عالم برزخ اور عالم اعراف ہے. نزولی مرحلہ عالم برزخ اور سعودی مرحلہ عالم حشر نشر ہے. ذرا غور کیجئے عالم ناسوت حشر نشر حشر جب جمع ہوگا واپسی کا اور نشر بھی وہیں سے ہو رہا ہے عالم ناسوت تک. اب آ جائیں پیج نمبر 236 پہ. اس پہ ایک چارٹ دیا ہوا ہے چارٹ کا عنوان ہے نزول اور صعود. اب جو بات ہم نے پڑھی اس کو دیکھیے کتنے آسان طریقے سے اور سلیقے سے ہماری اور آپ کی تفہیم کے لیے حضور مرشد کریم نے چند لفظوں میں اس کو سمیٹ دیا. دیکھیں نا یہ نزول کیا ہے کتاب المبین ہے کتاب المبین سے نزول شروع ہوتا ہے. یہ سائیڈ پہ ایرو دیکھیں نیچے کی طرف جا رہا ہے کتاب المبین سے لوہے محفوظ پہ آئے لوہے محفوظ سے برزخ میں آئے وہاں سے سماوات ہو گئی اور نیچے ارد ہو گیا. سماوات یہ شعوری درجات اور پھر اس کا ڈسپلے. अब देखिए कि सऊद कहां से शुरू हो रहा है, अर्ध से, यानी स्क्रीन से, यहां से जिसको यहां पे इसे एराफ कहा, एराफ के ऊपर हशर नशर आ गया। अब ये हशर नशर के बाद की दो कैफियतें हैं, एक है जन्नत दोजख और एक है अबद, और फिर ये जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है अबदुल आबाद, आप अबद में जब पूरी तरह आबाद हो गए, ये है सारा खेल। अब इसे गिनिए कि ये क्या कितने कदम हैं और कैसे हैं। किताबुल मुबीन से प्रोग्राम चला, उसका एक पेज, किताबुल मुबीन का एक पेज जिसमें 30 करोड़ लोहे महफूज हैं, वो 30 करोड़ अलवाहे महफूज में से एक लोहे महफूज के नीचे रे साया, एक बरजख है, फिर उससे नीचे उसके समावात हैं, और फिर उससे नीचे अर्ज है। अर्ज से जब वापसी का सफर शुरू करते हैं तो वापस हम एराफ में जाते हैं, एराफ से हशर नशर में जाते हैं, यहां से कयामत दोजख होती है, फिर ये अबद आ गया और बीच में अब्दुल आबाद आ गया। ये एराफ और हशर नशर के दरमियान जो मरहला है उसका नाम है कयामत। अब वो मैं तो ये मुकम्मल हो गई बात की। यहां पे आज आपने ये आलम बरजख और एराफ, ये चैप्टर जो है बरजख और एराफ, अब समझ आ गया कि ये बरजख असल में वो जगह जिस तरह से आप और हम समझे बैठे थे वैसी नहीं है, एराफ भी जैसे हम समझे बैठे हैं वो नहीं है, ये एक स्टेशन है, कुछ चीजें नजूल कर रही हैं, उनके दरमियान में एक पर्दा आता है, वहां पे आते हुए उसका नाम बरजख है, अर्ध तक वो आता है वो जो नजूल है, और फिर यहां से सऊद शुरू हो जाता है, और ये सऊद के हरकत में अर्ध के बाद एराफ है, एराफ के ऊपर हशर नशर है, फिर आपकी जन्नत दोजख है। यानी यहां पे फैसला हो गया कि भी ये किताबुल मरकूम अच्छी बनी, मजे में खुशी की कैफियत तो वो आप कैरी कर गए, अगर पछतावे की कैफियतें हैं तो कैरी कर गए, लिहाजा ये जन्नत दोजख साथ साथ हैं। फिर जन्नत दोजख के बाद अबद, और फिर उसके बाद एक मरहला है जिसको अब्दुल आबाद कहते हैं। ठीक हो गया जी।
यौम कहते हैं बनावट को, यौम कहते हैं बनावट को, लफ्ज यौम का अगर हम पूरा तमाशा वो करें ना, एनालिसिस पूरी तरह उसको वाजे करें तो ये लफ्ज है बनावट या हालत। अब यौमुल कयामा तो यौमुल मीजान, मीजान कहते हैं बैलेंस को, बैलेंस रखना है हमें अपने रवैयों में, यहां से लेकर आलम नासूत में जो बैलेंसिंग है ये फिर ऊपर तक जाएगी। अब ये जो हमारे उलमा फुजला के किए हुए तराजम है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो फिर यहां कुछ नहीं मिलेगा, और अगर यहां फोकस करेंगे तो उनका जाहिर है कि वो टैली नहीं करती ना बात, क्योंकि देखे उन्होंने यौम तो दिन को कर दिया यौमुल मीजान, असल में अल्लाह क्या फरमा रहा है और हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया कि जी जिस दिन हिसाब तोला जाएगा, अल्लाह फरमा रहा है कि बैलेंस रखो, हमने कर दिया कि आप इसी से अंदाजा करें ना, मालिक के यौमे दीन, वो जो मालिक है दीन, दीन मैंने सिस्टम, सिस्टम की बनावट का मालिक, आपने तर्जमा देखें क्या किया है, मालिक के यौमे दीन रोजे जजा का मालिक है, भाई आपने यौम का तर्जमा रोज किया, दीन का तर्जमा जजा कर दिया, तो इसे दीन का दिन क्यों नहीं कह देते,
ये तर्जमे का पर्दा हटा दें तो यौमुल मीजान को आप ओरिजिनल हालत में देख सकें। ठीक हो गया।
बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल। देखें बात यह है कि हमने बैलेंस यहां रखना है। जब अल्लाह की अल्लाह के नूर को समझेंगे तो बैलेंस हो गए। भाई अल्लाह के नूर को समझ नहीं तो बैलेंस होना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। अल्लाह आपको खुश रखे जी, बहुत नवाजिश।